शांति, ओम शांति। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा गाते हैं। गुरु के लिए कई कहावतें बनी है, गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना गत नहीं। समझते हैं गुरु द्वारा ही ज्ञान मिलता है जिससे हमारी गति होती है। यहाँ तक भी कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े का किसके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी जो गोविंद दियो मिलाए। तो गुरु का बहुत गायन करते हैं। बाबा कहते हैं वास्तव में है सतगुरु का गायन। सतगुरु के बिना घोर अंधियारा। तो आज दुनिया में गुरु तो बहुत है, लेकिन फिर भी भगवान को ही तो पुकारते हैं कि हे भगवान आकर हमें ज्ञान दो, ज्ञान का तीसरा नेत्र दो। सारी दुनिया इस समय बाबा कहते हैं अज्ञान अंधेरे में है, सारी दुनिया। भक्ति की तो सीढ़ी बहुत चढ़ चुके हैं, अति तक पहुंच गए हैं, लेकिन अभी बाबा जो ज्ञान का सागर है वही आकर के ज्ञान की सीढ़ी देते हैं। अब इस ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ो तो भक्ति की सीढ़ी से तो उतरना पड़ेगा, तो भक्ति की सीढ़ी से उतरकर ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ो तब तुम्हारी सदगति होती होगी। तो कैसे ज्ञान की सीढ़ी पर चढ़ेंगे, उसके लिए बाबा ने ज्ञान का तीसरा नेत्र हमें दिया है। इस नेत्र से हमें इतनी रोशनी मिल जाती है जो हम सब कुछ समझ जाते हैं और पुरुषार्थ में लग जाते हैं। तो आज की सारी मुरली इसी पर है। तो गीत कौन सा होगा, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज प्रगटा दे भगवान। तो मनुष्य आज कितने अज्ञान अंधेरे में है, भटक रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, अशांत है, परेशान है। तो इसलिए बाबा हम बच्चों को ताकीद करते रहते हैं, बच्चे तुम भक्तों की पुकार नहीं सुन पाते हो, कितना भक्त चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, बुला रहे हैं, तो अब आपको उनकी पुकार सुननी है तो कैसे सुनेंगे। उसके लिए तो बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए। और फिर बाबा कहते हैं मनसा सेवा करो, एक एक के पास तो नहीं जा सकते हो लेकिन मनसा सेवा करो। तो बाबा ने कई युक्तियां बताई है और आज पहली जून है, आज से और भी आपको युक्तियां बताई जाएगी। 15 दिन के लिए ये होमवर्क मिला है जो मनसा सेवा हरे करे। और एक पत्र भी मधुबन से गया था कि हर सोमवार मौन व्रत रखे। तो आज सोमवार है और कोइंसिडेंस पहली तारीख है, तो आज ये लक्ष्य रखें कि हम मौन में रहेंगे, जितना हो सके मौन में रहें और सकाश दे दुनिया को। बहुत आवश्यकता है इस समय। दुख के बाबा कहते पहाड़ गिर रहे, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोग चिल्ला रहे हैं, तो हम बच्चों की अब ये सेवा है, वाचा से ज्यादा मनसा की सेवा करनी है। तो विशेष बाबा हमें कहते हैं सबको ज्ञान का नेत्र देकर उनको जगाओ। तो एक एक के पास तो नहीं जा सकेंगे लेकिन मनसा द्वारा अवश्य सेवा कर सकेंगे। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 1 जून 2026 है, हेडिंग है मीठे बच्चे बाप की श्रीमत है। आज की श्रीमत क्या है? बाप की श्रीमत है इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो, पीछे मत देखो, आगे देखो। एक तो बाप को देखो, दूसरा नई दुनिया को देखो, वतन को देखो। अपनी बाप की श्रीमत है इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। आज बाबा ने मैनर्स की बात कही है, शिष्टाचार होता है ना, मैनर्स, कैसे सबसे बात करनी होती है। कई बार बाबा कहते हैं जोर से हंसना भी, ये भी विकार है, ये भी बाबा बताते, जोर से हंसना वो तो असुरों का काम है। रावण को कैसे दिखाते, जोर जोर से हंसता है, और राम को कैसे दिखाते, एकदम प्यार की दृष्टि देता है। तो बाबा कहते हैं वो जोर जोर से हंसना ये भी आसुरी मैनर्स है। तो बाबा कहते हैं बाप की श्रीमत है इस पुरानी दुनिया से अपना मुख मोड़ लो। जीवन मुक्ति के लिए तुम दैवी मैनर्स धारण करो। प्रश्न है कौन से मैनर्स, या व्यवहार में मैनर्स दिखाते ना हम, कैसे एक दो के साथ पेश आते हैं, तो कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता। दैवी मैनर्स वैसे तो माँ बाप बच्चों को मैनर्स सिखाते हैं, सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, आजकल ये मैनर्स सिखाते हैं, तो ये तो है। लेकिन दैवी मैनर्स कौन से होते हैं वो तो बाबा ही बताते हैं। तो कौन से मैनर्स बाप के सिवाय कोई भी सिखला नहीं सकता। हाँ, कौन से मैनर्स बाबा ही सिखलाते हैं? उत्तर है पवित्र बनना और बनाना, ये है दैवी मैनर्स। पवित्र बनना और बनाना ये है सबसे बड़ा दैवी मैनर्स। तुम घर गृहस्थ में रहते पवित्र रहो, ये शिक्षा एक बाप ही देते हैं, दूसरा कोई भी दे नहीं सकता। घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहो, ये बाबा के सिवा और कोई शिक्षा ऐसी दे नहीं सकता। तुम बच्चों का बेहद का संन्यास है। तुम इस पुरानी दुनिया को ही बुद्धि से भूलते हो। तुम जानते हो पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, पवित्रता की धारणा से बाकी सब मैनर्स स्वतः आ जाते हैं। गीत है, आज अंधेरे में है हम इंसान, ज्ञान का सूरज प्रगटा दे भगवान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की एक लाइन सुनी, एक तरफ है सारी दुनिया, वो सारी दुनिया क्या है, भक्ति मार्ग वाले, सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले हैं, और दूसरे तरफ हैं तुम बच्चे ज्ञान मार्ग वाले। अंतर है ना, भक्ति मार्ग वाले और ज्ञान मार्ग वालों में कितना अंतर है। वो भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं और तुम बच्चे फिर ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते रहते हो। भक्ति की सीढ़ी उतरते हो, बुद्धि में लाओ, दो सीढ़ियां हैं, एक भक्ति की सीढ़ी, द्वापर युग से भक्ति की सीढ़ी चढ़ी और एकदम ऊपर पहुंच गए, और दूसरी है ज्ञान की सीढ़ी, जो बाबा कहते वो उतर जाओ और ये सीढ़ी चढ़ो। फिर ज्ञान की सीढ़ी तुम चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो, तो बच्चे जानते हैं आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। भक्ति भी पहले अव्यभिचारी होती है, पीछे व्यभिचारी बनती है। बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं। अव्यभिचारी भक्ति में एक की भक्ति, फिर चलो धीरे धीरे अनेकों की भक्ति शुरू हुई, फिर तो प्रकृति की भक्ति, टिवाटे की भक्ति, मनुष्यों की भक्ति, सबकी भक्ति, तो ये सारी व्यभिचारी भक्ति हो जाती है। तो बाबा कहते बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में आ जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते भी हैं, कुछ समझते नहीं है इसीलिए गाते भी हैं, हम अंधियारे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। अब गुरु तो यहाँ बहुत है, अब सच्चा सतगुरु कौन? गुरु तो बहुत है, सच्चा गुरु कौन? साधु संत महात्मा भगत आदि सब साधना करते हैं अथवा याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद आदि पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं, इतना शास्त्र पढ़ते हैं फिर भी क्या कहते हैं, भगवान जब आएगा तब ही आकर, भगवान जब आए तब ही आकर हमारी सदगति करे, फिर यही कहते हैं, भले कितने भी शास्त्र पढ़ते हैं, तो भगवान जब आए तभी आकर हमारी सदगति करे। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, हम बच्चे तो अब घोर सोजरे में आ रहे हैं ना, अभी तुम बच्चे घोर अंधियारे में नहीं हो, तुम ज्ञान की रोशनी में आए हो। पतित पावन बाप को तुम जानते हो और उनको याद करते हो। जितना जो बच्चा याद करता है, अब बाबा एक एक के लिए तो नहीं कहेंगे, अब बाबा तो जनरल कहेंगे, बस क्या कहेंगे बाबा, जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अगर ज्ञान की धारणा नहीं करते, हाँ बाबा को याद नहीं करते, तो समझो वो भी अज्ञान अंधियारे में ही है। तो जितना जो बच्चा याद करता है और ज्ञान की धारणा करता है उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है। अब रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है, गुरु तो अनेक है, फिर भी उस सतगुरु को ही बुलाते हैं, फिर उनको ही कहते हैं कि ज्ञान का प्रकाश दो। तो बाबा कहते हैं अब रोशनी में ले जाने वाला तो एक ही बाप है, इसलिए गायन है। क्या गायन है? ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। सतगुरु के बिना ज्ञान का अंजन सुरमा है ना, ज्ञान का सुरमा और कोई नहीं दे सकता है, ये ज्ञान की बात है। हाँ वो सुरमे की बात नहीं है, हमारी बहनें यज्ञ में थी तो हैदराबाद सिंध में सिंधी लोग, सिंधी माताएं बहुत सुरमा लगाती थी, तो लोग बहुत डरते थे, कहेंगे वहां जाएंगे ना आपको सुरमा लगाएंगे और सुरमा से जादू लग जाएगा। तो बाबा कहते हैं ये ज्ञान का सुरमा है, कोई और सुरमा नहीं है, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ फिर योग भी रहता है, ज्ञान अकेला तो नहीं होगा ना, ज्ञान आत्मा परमात्मा का ज्ञान है, तो ज्ञान के साथ योग भी है कि आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, तो ज्ञान के साथ योग भी रहता है जरूर। जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उससे भी योग रहता है, अब जो भक्ति सिखलाएगा उसके साथ योग होगा, तो जो ज्ञान सिखाएगा तो ज्ञान सिखाने वाले के साथ योग होगा। तो जो मनुष्य भक्ति सिखलाते हैं तो उसे भी योग रहता है। अब तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है किसके साथ? निराकार परम पिता परमात्मा के साथ। अब तुम्हारे में भी नंबरवार है, सबका तो एक साथ एक जैसा बुद्धि योग नहीं लगा हुआ है निराकार परम पिता परमात्मा के साथ, तुम्हारे में भी नंबरवार है। और कोई मनुष्य मात्र का परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान से योग है ही नहीं, है ही नहीं योग, किसी का भी उस परम पिता परमात्मा सर्वशक्तिवान के साथ योग है ही नहीं, सिवाय तुम बच्चों के। चढ़ता है नशा, हमारे सिवाय और किसी का भी उस सर्वशक्तिवान से योग है ही नहीं। तुमको बाप से और मुक्ति जीवन मुक्ति से योग लगाना पड़ता है। जीवन मुक्ति के लिए फिर दैवी मैनर्स भी बहुत अच्छे चाहिए। इस समय तो सबके मैनर्स आसुरी हैं, परम पिता परमात्मा के भी गुण गाए जाते हैं ना। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। अब बाबा सारी महिमा गा रहे हैं शिव बाबा की, और फिर बाबा क्या कहते हैं, पवित्रता का सागर है परंतु फॉर एवर। अब बाबा अंतर कर रहे हैं, तुम बच्चों को भी मैं मास्टर बनाता हूँ, मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर शांति के सागर बनते हो, लेकिन फॉर एवर नहीं, सदा के लिए नहीं बन सकते हो, सदा के लिए नहीं बन सकते हो, केवल अभी बनते हो बस। क्योंकि सदा के लिए क्यों नहीं बन सकते हो, मैं ही केवल हूँ जो सदा के लिए इन गुणों का सागर हूँ। तो बाबा ने कारण बताया है, फॉर एवर माना सदा के लिए, उनका ये पद अविनाशी है। शिव बाबा का ये पद जो है ज्ञान का सागर, शांति का सागर, जो उनके गुण है, ये सदा के लिए है, अविनाशी है ये गुण। उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का ये अविनाशी पद हो न सके, ये गुण उनके सदा ही नहीं चल सकते। भल अभी तुम ज्ञान का सागर, पवित्रता का सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो, केवल संगम युग तक बस, वहां तो ज्ञान होगा ही नहीं सतयुग में। तो इसलिए बाबा कहते हैं तुम लिमिटेड बनते हो संगम युग के लिए। बाप कहते हैं मैं तो अनलिमिटेड हूँ, मैं तो बेहद का हूँ, सदा ही हूँ ज्ञान का सागर, शांति का सागर, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता है। कई बच्चे पूछेंगे ना बाबा को कि बाबा आप अनलिमिटेड हो, सदा ही हो सब गुणों के सागर, हम क्यों नहीं बन सकते हैं? तो बाबा कहते हैं तुम नहीं बन सकते हो। क्यों नहीं बन सकते हैं? बाबा कारण बताते हैं, तुमको अनलिमिटेड बना नहीं सकता कि सदा ही तुम ज्ञान का सागर, ये गुणों का सागर रहो। क्यों? नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले? अब बताओ, सृष्टि का खेल कैसे चलेगा अगर सदा हम बच्चे भी ज्ञान का सागर, शांति का सागर बने? हम तो भगवान हो गए फिर तो भगवान हो गए तो फिर ये खेल कैसे चलेगा? भगवान तो खेल में आता ही नहीं। तो बाबा कहते नहीं तो फिर सृष्टि का खेल कैसे चले? 84 जन्म कैसे भोगेंगे? क्योंकि ज्ञान खत्म हो जाता है तभी तो धीरे धीरे नीचे उतरते ना। अगर वहां भी ज्ञान के सागर होंगे तो नीचे तो उतरेंगे ही नहीं, फिर खेल कैसे चलेगा? खेल में है ही हार और जीत, सुख और दुख, ये खेल है। तो खेल में आना है तो जरूर ये सारे गुण हमारे सदा के लिए तो हो ही नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं 84 जन्म फिर कैसे भोगेंगे? तुम फॉर एवर बन नहीं सकते, सदा के लिए ये गुणों के सागर बन नहीं सकते। तुमको लिमिटेड बनाता हूँ, लिमिटेड बाबा बनाते हैं, सब पूरा नहीं देते। 21 जन्मों के लिए लिमिटेड माना, 21 जन्मों के लिए बनाता हूँ, 21 पीढ़ी भी लिखा हुआ है। तुम फॉर एवर बनो ये ड्रामा में कायदा ही नहीं है। सदा के लिए हम ज्ञान के सागर, सब गुणों के सागर बन जाए, ये ड्रामा में कायदा ही नहीं है। मैं तो हूँ ही फॉर एवर, मैं रहता ही हूँ परम धाम में, मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि है ही है, है ही है। हाँ, मेरे से कभी ये गुण खत्म नहीं होते, है ही है। तुम भूल जाते हो तो इस समय बाप आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसे कह न सके, दूसरा कोई कह न सके क्या, कि कि मैं परम धाम से आया हूँ। कोई आत्मा कहे कि मैं परम धाम से आया हूँ, अब मुझे याद करो, ये कोई और नहीं कह सकता, ये केवल भगवान ही कह सकते हैं। ये मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी कर नहीं सकता कि मैं परम धाम से आया हूँ अब मुझे याद करो। ये मेरे महावाक्यों की कोई कॉपी कर नहीं सकता। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने। तो बनना चाहिए ना, देखो कितना प्यार से बाबा कहते हैं 21 जन्मों के लिए राजाओं का राजा बनाने आया हूँ, तो बनना चाहिए ना। अब बनेंगे वही, बनना तो चाहिए परंतु सब तो नहीं बनेंगे ना, तो कौन बनेंगे? बनेंगे भी वही जो कल्प पहले बने हैं, सीधी बात है। तुम जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, और फिर कितने अजामिल जैसे पापी भी बन जाते हैं। बाबा का बनते हैं, ज्ञान सुनते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं, बाबा को याद करते हैं, फिर दुनिया में चले गए तो फिर जैसे अजामिल जैसे पापी भी बन जाते हैं। कितने अशुद्ध मैले बन जाते हैं, बाप को आकर मैले कपड़े साफ करने पड़ते हैं। आत्मा ही मैली बनती है। कपड़े साफ करना का मतलब ये नहीं शरीरों को साफ करते हैं, आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते हैं कि तुमको माया ने कितना मैला बनाया है। सिर्फ एक इस जन्म की बात नहीं है, केवल इस एक जन्म के लिए मैले नहीं बने हो, 63 जन्मों से तो मैले बनते आए हो 63 जन्म। तो कितने एक जन्म की बात नहीं है, ये तो जन्म जन्मांतर की बात है। जो आत्मा को साफ करने के लिए फिर मैं क्या देता हूँ, बाबा कहते हैं लक्ष्य सोप देता हूँ। ये बाबा पहले बहुत कहते थे लक्ष्य सोप, लक्ष ये साबुन पहले बहुत यूज होता था, आजकल तो कई वैरायटी साबुन आ गए हैं, पर लक्स सोप खास यूज होता था, बहुत लोग यही यूज करते थे सोप अपने बदन को साफ करने लिए। तो बाबा कहते हैं तो आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सोप देता हूँ। कौन सा लक्ष्य बाबा देते हैं? मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो बुझी हुई है वो इस योग से जग जाएगी। लक्ष्य साबुन से आत्मा जो बुझी हुई है वो योग से जग जाएगी। जितना जितना मुझ बाप को याद करेंगे उतना उतना पावन बनते जाएंगे। तो बाबा स्मृति दिलाते हैं क्या? तुमको हमने स्वर्ग में भेजा था, फिर माया ने तुमको मैला बना दिया, अब फिर से मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा से बात करते हैं शिव बाबा, आत्मा से बात करते हैं। हे बच्चे, लौकिक बाप की विस्मृति करो, ते से दे के सब संबंधों को भूलो। तो लौकिक बाप की विस्मृति करो, देह सहित देह के सब संबंध भूल कर मुझ अपने बाप को याद करो तो तुम्हारी आत्मा साफ होती जाएगी। लक्ष्य सोप से साफ होती जाएगी, फिर तुमको शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा, फिर तत्व आदि भी सब नए सतो प्रधान हो जाते हैं। तो बाप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया को भूलते जाओ, भूलते जाओ, मुझे याद करो तो तुम मेरे पास आकर फिर स्वर्ग में जाएंगे। पहले मेरे पास आएंगे, घर में आएंगे परमधाम, फिर तुम स्वर्ग में जाएंगे। ये पुरानी दुनिया है, इसमें कोई चीज बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, अब पुरानी चीज दुनिया में जो कुछ होगा सब पुराना ही है ना, लेकिन वो कोई नई चीज बनाते हैं तो उस पर फिर नया शब्द डालते हैं, तो उस पर नया नाम रख देते हैं। जैसे नई दिल्ली, अब दिल्ली तो थी पहले, है भी, लेकिन फिर नए नए मकान बनाते रहे तो फिर उसका नाम रख दिया नई दिल्ली। जैसे नई दिल्ली पुरानी दिल्ली कहते हैं ना, तो दो दिल्ली जैसे हो गई। परंतु दुनिया तो पुरानी ही है ना, भले नई दिल्ली बनी लेकिन दुनिया तो पुरानी है ना। अब तुम बच्चों का इस पुरानी दुनिया से बुद्धि योग बिल्कुल हट जाना चाहिए। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम वहाँ है जहाँ हमें जाना है, तो वहाँ हमें जाना है, जहाँ जाना है उसी को याद करना है। हम आत्माओं का स्वीट होम व निर्वाण धाम है, वहाँ जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े, क्योंकि आत्मा ही जाएगी ना शरीर के साथ, शरीर तो जाएगा नहीं, तो आत्मा निश्चय करना पड़े। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मति सो गति हो जाएगी। मनुष्य जो अनेकों को याद करते हैं, मनुष्य तो अनेकों को याद करते हैं, कोई किसी गुरु को, कोई श्री कृष्ण को। अब श्री कृष्ण आदि कहाँ गए? चलो श्री कृष्ण को याद करते हैं, श्री कृष्ण तो कहाँ गया? वो कहाँ गया ये कोई नहीं जानता, कहाँ गया श्री कृष्ण? अब कहते वो भी तो चक्र में आया है, तो कहाँ गया ये कोई नहीं जानते। ये नहीं समझते कि पुनर्जन्म में सबको आना है, श्री कृष्ण की आत्मा को भी पुनर्जन्म में आना है। ये रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है, पुनर्जन्म की रस्म रिवाज सृष्टि के आदि से चली आती है। सतयुग आदि में देवी देवताएं हैं, जरूर पुनर्जन्म वहां से ही शुरू हुआ होगा, जरूर पुनर्जन्म सतयुग आदि से ही शुरू हुआ होगा। पहले पहले है श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, श्री कृष्ण फर्स्ट पवित्र मनुष्य, उनकी महिमा जास्ती है। क्यों बाबा कहते हैं उनकी महिमा जास्ती है? लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है, क्योंकि बच्चे तो पवित्र सतो प्रधान होते हैं, तो महिमा बच्चों की गाई जाती है। श्री कृष्ण की बहुत महिमा है, परंतु क्यों बाबा कृष्णपुरी है कहाँ? कृष्णपुरी कहाँ है? वैकुंठ कहते भी हैं, श्री कृष्ण को वैकुंठ नाथ भी कहते हैं, तो वैकुंठ तो कहते ही हैं कि वो कृष्णपुरी थी, वैकुंठपुरी थी। परंतु सतयुग को फिर वैकुंठ कहते भी हैं सतयुग को, वैकुंठ तो सतयुग को ही कहेंगे ना। फिर पता नहीं श्री कृष्ण को द्वापर में क्यों कह दिया है। एक तरफ कहते वो तो वैकुंठ नाथ था श्री कृष्ण, फिर उनको द्वापर में क्यों ले गए हैं? बाबा कहते पता ही नहीं क्यों ले गए द्वापर में श्री कृष्ण को। अब वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में तो आ न सके, भले श्री कृष्ण की आत्मा द्वापर युग में भी आई थी ना, लेकिन उस श्री कृष्ण के रूप में तो नहीं होगी ना। अभी संगम युग पर तो ब्रह्मा के रूप में है, श्री कृष्ण के रूप में तो नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में तो आ न सके, श्री कृष्ण उसी रूप में सारे कल्प में फिर नहीं आ सकता है, सिर्फ पहला जन्म। वही चीज दूसरे कोई नाम रूप देश में तो आ न सके, वही नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता, कि फिर और किसी जन्म में फिर श्री कृष्ण के रूप में जन्म लेवे। बाबा कहते ये हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में ही था, तुम जानते हो ये जगत अम्बा जगत पिता जाकर के श्री लक्ष्मी नारायण बनेंगे। सतयुग को कृष्णपुरी कहा जाता है, अब है कंसपुरी, ये सब आसुरी नाम है, कंसपुरी में सब आसुरी नाम है। महाभारत में भी जो कौरवों के नाम दिखाते हैं ना, सब द से शुरू होते हैं। दुर्योधन, दुशासन, ऐसे द द द। और जो सुंदर नाम होंगे वो स, सु, सुशासन, सुशील, स से। तो स अच्छा और द बुरा। तो बाबा कहते हैं, तो इसीलिए कौरवों के सारे नाम द से शुरू होते हैं। तो बाबा कहते हैं, अब ये सब आसुरी नाम है कलयुग में। वहां थे दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। तो बाप बैठ बच्चों को संगम पर समझाते हैं। वो बाप है रचयिता, उनको कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे, ये भी समझ की बात है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है तो जरूर नई मनुष्य सृष्टि रचेंगे। तुम गाते भी हो, बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित सृष्टि को आकर के पावन बनाओ। पावन सृष्टि रच, पतित सृष्टि का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रच, शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश कराते हैं। अब ये बातें और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चे बाप के साथ योग लगाते हो, तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं। कभी कभी बाबा की मुरली इतनी सावधानी की मुरली होती है ना, तो क्या कहते हैं कई बच्चे, आज तो बाबा ने हंटर लगाया, आज तो बाबा की मुरली धर्मराज की मुरली थी। तो बाबा कहते हैं, तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं। कई सटका जब जैसे मैले कपड़े होते हैं पर बहुत सड़े हुए होते हैं, तो बहुत जोर से सटका लगाया तो वो तो फट जाते। तो कई बाबा के बच्चे ऐसे भी है जो थोड़ा सा उनको ज्यादा कहा तो बस फिर जाकर दुनिया में माया के हो जाते। तो बाबा तो तुम देखते हो बाबा मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं, कोई तो फट जाते हैं। बहुत मैले है और बहुत पुरानी है, उनको सटका लगाएंगे तो फट जाते हैं। कोई तो टूट पड़ते हैं बाबा के बच्चे, कोई तो बहुत मैले अजामिल जैसे पापी हैं जो बिल्कुल धारणा होती नहीं है उनको। ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं। बाप कितनी अच्छी बातें समझाते हैं और कितना प्यार से समझाते हैं। मीठे लाडले बच्चे, मीठे मीठे बच्चे, मीठे लाडले बच्चे, मुझ मोस्ट बिलविड बाप को याद करो, मोस्ट बिलविड सुख धाम को याद करो। तो सुख धाम भी मोस्ट बिलविड है। ये भी तुम अब जानते हो, दुनिया में कोई को पता नहीं है, ये तो अब है अति दुख धाम। मनुष्य त्राही त्राही करते रहते हैं, एक दो को मारते रहते हैं, फिर कहते हैं, जब किसी को बहुत मार पड़ती है ना, तो फिर वो क्या कहते हैं, भगवान रक्षा करो, रक्षा करो, ये जरूर मुख से निकलेगा, हे भगवान मेरी रक्षा करो, ये मुख से निकलता है ना जब कोई किसको मारते हैं तो, मेरी रक्षा करो तो ये जरूर मुख से निकलेगा। बाप तो लिबरेटर है ना। तुम जानते हो बाप आए हैं हम बच्चों को, इन पर्टिकुलर माना खास, और सबको इन जनरल आम। तो इन पर्टिकुलर हम बच्चों को और सबको इन जनरल सुख धाम में ले चलने के लिए। तुम बच्चों में भी नंबरवार है जिनको ये नशा है। ये पढ़ाई कोई कम नहीं है, पढ़ाते भी देखो किसको है। क्या थे हम पहले सब, बाबा का बनने से पहले हम सब क्या थे, हाँ देखो किसको पढ़ाते हैं। अजामिल जैसे पाप आत्माओं को पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। अजामिल जैसे पाप आत्माएं थे ना हम, तो उनको बाबा कहते पढ़ाकर स्वर्ग का मालिक बना देते हैं। तमो प्रधान तो सब है, उनको सतो प्रधान दुनिया में ले जाना पड़ता है। तो बच्चों को बार बार समझाते हैं। कौन सी बात बार बार समझाते हैं बच्चे? यहाँ दैवी गुण धारण करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में है, ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सिखाते हैं। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं, अगर किसको पवित्र बनाते भी हैं तो ऐसे नहीं कहते घर में रहकर पवित्र बनो, वो घर बार छुड़ा देंगे तब वो पवित्र उनको बना सकते हैं। सन्यासी तो घर बार छुड़वाते हैं और यहाँ बाप कहते हैं तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुमको तो इस पुरानी दुनिया को छोड़ना है। घर बार छोड़ना नहीं है परंतु सारी पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वो है हद का सन्यास और ये है बेहद का सन्यास। उन सन्यासियों को भी कितना मान मिलता है, हद के सन्यासी है, पवित्रता धारण की है तो उनको कितना मान मिलता है। साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत देती है ना। कई गुरु कई मिनिस्टर्स आदि भी गुरुओं के पास जाते हैं ना, तो वो गुरु उनको मत देते हैं। तो साधु समाज गवर्नमेंट को भी मत देती है, राय देती है। आगे चलकर क्या होगा? आगे चलकर ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। वो दिन कब आएगा जब ये बाबा कहते हैं ये सन्यासी आदि भी तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे। अब महिमा तो करते हैं, जो भी जहाँ भी हमारे प्रोग्राम होते हैं कोई न कोई महात्माओं को तो बुलाते ही हैं और वो खूब महिमा करते हैं। तुम माताओं के चरणों में गिरेंगे, माताओं बिगर उनों का उद्धार नहीं हो सकता। कितनी बड़ी बात है ये कि माताओं बिना गुरुओं का भी उद्धार नहीं हो सकता है, क्योंकि तुम नॉलेज देते हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं है, ऐसे नहीं कि वो हमारे चरणों में गिरेंगे, लेकिन बाबा कहते तुम्हारे बिना उनका उद्धार नहीं होगा। हाँ, कोई नमस्ते व राम राम करते हैं तो रेस्पॉन्ड तो देना होता है ना, रेस्पॉन्ड देते हैं, राम राम कहते हैं तो फिर हम नमस्ते करते हैं। बाबा भी कहते हैं बच्चे नमस्ते, बाबा भी बच्चों को नमस्ते करते हैं तो बच्चे भी बाबा को नमस्ते करते हैं। मैं तुम बच्चों को अपने से भी ऊंच बनाता हूँ, तुमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ। भगवान से भी हमको ऊंचा बनाते हैं बाबा, हमको ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाते हैं। और मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु तुम्हें श्रीमत पर भी तो चलना पड़े ना। अभी मैं आया हूँ तुमको इतना ऊंचा बनाता हूँ, परंतु श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। राम रावण और सीता का खिलौना है ना, देखा ये खिलौना बाबा के पास होता था, बाबा बच्चों को दिखाते थे हाँ कैसे एक एक में एक तरफ राम है एक तरफ रावण है और फिर दूसरा खिलौना उसके साथ साथ उसमें सीता है। तो जब सीता रावण के सामने आती है तो मुख मोड़ लेती है, ये मैग्नेट का खेल है। अब क्योंकि पॉजिटिव जो होगा वो पीछे चला जाएगा, तो फिर जहाँ राम आता है वहाँ वो आगे आ जाती है, रावण आता है तो पीछे चली पीठ दे देती है। तो बाबा कहते हैं ये राम रावण और सीता का खिलौना है ना, सीता रावण को पीठ कर देती है। जब रावण आता है तो सीता पीठ कर लेती है, जब राम सामने आता है तो फिर सीता उनको देखती है। सीता रावण को पीठ कर देती है, राम को मुंह कर देती है। श्री कृष्ण का भी चित्र है, नरक को लात मार रहा है श्री कृष्ण और स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाप बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु विरला व्यापारी ये व्यापार करे। बिरला व्यापारी ये व्यापार करे, समझाते तो बाबा बहुत अच्छा है। बाबा को अपना पुराना तन मन धन दे नया ले, ये बड़ा फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। पुराना तन मन धन दे नया ले, ये फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाप कहते हैं तुम अपनी आत्मा पवित्र बनाएंगे तो फिर शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर तुम स्वर्ग की राजाई करेंगे। इसलिए उनको, बाबा को क्या कहा जाता है, सौदागर जादूगर। बाबा से सौदा करते हैं हम, पुराना देते हैं बाबा सब नया देते हैं हमें। तो बाबा कहते हैं इसीलिए उनको सौदागर जादूगर कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना, ईश्वरीय जादूगरी। पतित को पावन बनाना, कांटों को फूल बनाना, ये ईश्वरीय जादूगरी कहेंगे ना। बाप कहते हैं नर्कवासियों को स्वर्गवासी बनाओ, कैसा फर्स्ट क्लास जादू है, एकदम नर्कवासी और उनको स्वर्गवासी बनाए, तो एकदम हाँ कितना बड़ा जादू है ये, इसमें प्राप्ति बहुत है। बाप कहते हैं राजाओं का राजा बनो, उसके लिए क्या करो, फॉलो फादर, बाबा मम्मा को फॉलो करो। बाप बैठे हैं ना, बाप बैठे हैं, कई कहते कैसे फॉलो करो, तो अधर कुमार है, अधर कुमारियां हैं, तो बाबा कहते ब्रह्मा बाबा को फॉलो करो, कुमार कुमारियां हैं तो मदर मम्मा को फॉलो करो। तो बाबा कहते फॉलो करना पड़े ना, बाप से वर्षा मिलता है। तुम कहेंगे हाँ एक मिनट फॉलो करो ना, बाप बैठे है ना, ये अधर कुमार है, ब्रह्मा बाबा अधर कुमार है और मम्मा कुआरी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। जो अधर कुमार अधर कुमारी है वो ब्रह्मा बाबा को फॉलो करे, जो कुमार कुमारी है वो मम्मा को फॉलो करे, तो फॉलो करना पड़े ना। वर्षा बाप से मिलना है, तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं। वैसे तो लौकिक रीति बहन को वर्षा नहीं मिलता है, भाई को वर्षा मिलता है, यहाँ तो तुम सबको वर्षा मिलना है, क्योंकि तुम सब आत्माएं हो ना, सब पुरुष हो, आत्मा पुरुष है, तो आत्मा को वर्षा मिलना है, क्योंकि तुम सब पुरुष सब आत्माएं हो ना। बाप कहते हैं तुम सबको मेरे पास आना है, फिर तो ये भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा। संगम पर फिर भी भाई बहन कहलाते हैं, लेकिन जब परम धाम में आत्मा जाएगी तो वहां भाई बहन का नाता भी टूट जाएगा, वहां है बस बाप और बच्चों का नाता, सब भाई आत्मा रूपी भाई भाई, बहन बहन कोई नहीं, वहां है बाप और बच्चों का नाता। निर्वाण धाम में इसलिए निर्वाण धाम में इसीलिए कहते हैं वी आर ऑल ब्रदर्स। तो वी आर ऑल ब्रदर्स ये वास्तव में कहां के लिए कहेंगे, परम धाम के लिए, आत्मा ही सब ब्रदर्स है, वी आर ऑल ब्रदर्स, हम सब भाई भाई हैं। अगर ईश्वर को सर्वव्यापी कहें तो फिर फादरहुड हो जाता है, सब पिता पिता हो गए। इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने बाबा कहते कितना नुकसान किया है, इसलिए भगवान से दूर हो गए हैं, वो पिता पुत्र का रिलेशन ही खत्म हो गया, सब भगवान ही भगवान है, सब में भगवान है, तो कितना नुकसान किया इस सर्वव्यापी के ज्ञान ने। अब तुम बच्चों पास बाप की याद है, बाप को याद करने में ही मेहनत जास्ती है, ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए, बाबा को याद करना है तो कोई सामने बिठाए आपको और आपको दृष्टि दे तब हम आपका योग लगे, ऐसी बात नहीं है, योग तो कहाँ भी आप चलते फिरते भी कर सकते हो, तो ऐसे भी नहीं कि तुमको कोई निष्ठा में बिठाए, माना सामने बिठा करके आपको दृष्टि दे तब आपका योग लगे, तो सामने तुमको कोई निष्ठा में बिठाए, तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है, यहाँ तो तुम मुरली सिर्फ बैठ सुनते हो, हाँ सुनाते हो, योग तो तुम्हारा सदैव रहता है। मुरली सुनी फिर चलते फिरते याद में रहना है, सुनाते भी हो तो भी सुनाई फिर चलते फिरते याद में रहना है। हम यात्रा पर जा रहे हैं, जितना हो सके याद में रहना है। 8 घंटा सर्विस करो वो भी छूट है, 8 घंटा सर्विस करो वो भी छूट है, बाकी टाइम देना है। मूल बात है ही पवित्रता की। तुम जानते हो ये है कांटों का फॉरेस्ट, जंगल, कांटों का जंगल। 1-2 को कांटा लगाते रहते हैं। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, शिव बाबा भी बात करते हैं और ब्रह्मा बाबा भी बात करते हैं, दोनों ही कहेंगे ना श्रीमत पर चलो, ब्रह्मा भी बात करते हैं शिव बाबा भी बात करते हैं। अब परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट्स हो, तुम कहते हो वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, और गारंटी करते हैं वो बाप टीचर गुरु सतगुरु गारंटी करते हैं। कौन सी गारंटी करते हैं? मैं तुमको वापस ले जाऊंगा, ये भगवान हमको गारंटी करते हैं कि मैं तुमको वापस ले जाऊंगा। ऐसे कोई और गारंटी कर न सके, कोई भी आत्मा ऐसे गारंटी नहीं कर सकती मैं तुमको मुक्ति दिलाऊंगा, मैं तुमको परम धाम ले जाऊंगा। ये तो बाप ही कहते हैं, गॉड फादर ही सुख देने वाला धर्म स्थापन करते हैं, सुख देने वाला धर्म शिव बाबा ही स्थापन करते हैं। उस बाप को कोई जानते नहीं, अगर बाप को जाने तो फिर और क्या क्या जाने, बहुत कुछ जान जाए, क्योंकि बाप को जाने तो बाप की रचना को भी जाने, और बाप को जाने तो फिर बाप की प्रॉपर्टी को भी जाने। पिता को जान लिया तो पिता की कैसे रचना है उनको भी समझ जाए, उनसे क्या मिलता है वो भी समझ जाए, वो भी जान जाए। अच्छा अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। कितना बड़ा लक्ष्य बाबा ने दिया है, तो ऐसा दैवी गुण धारण करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को सदा सामने रख दैवी गुण धारण करने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। सतो प्रधान दुनिया में चलने के लिए पवित्रता के मैनर्स अपनाने हैं। बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। दूसरा, मोस्ट बिलवड बाप को और अपने सुख धाम को याद करना है। इस दुख धाम से बुद्धि का योग निकाल देना है। वरदान, सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा। कौन सी उत्कंठा हो? कि सबका गुण देखना है और सबको संतुष्ट करना है, ये उत्कंठा हो अंदर में, तीव्र इच्छा हो। सर्व के गुण देखने व संतुष्ट करने की उत्कंठा द्वारा सदा एक रस उत्साह में रहने वाले गुण मूर्त भव। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए जो भी संबंध में आते हैं, जिनके भी संबंध में आप आते हो, उन्हें संतुष्ट करने की उत्कंठा हो, उत्कंठा हो कि इनको संतुष्ट करूं। जिसको भी देखो उससे हर समय गुण उठाते रहो। सर्व के गुणों का बल मिलने से उत्साह सदा काल के लिए रहेगा। सबका गुण उठाएंगे तो सदा काल के लिए उत्साह बना रहेगा। उत्साह कम तब होता है, उत्साह कम कब होता है, जब औरों के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न बातें देखते और सुनते हो, लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा। और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूरत बन जाएंगे। गुण मूरत बनने के लिए, सर्व गुण संपन्न बनने के लिए सबसे अच्छी युक्ति क्या है, हरे का गुण उठाओ बस। तो इतने से एक एक गुण अगर एक एक का उठा लेंगे तो सर्व गुण संपन्न जरूर बनेंगे। तो बाबा कहते हैं लेकिन गुण देखने की उत्कंठा हो तो एक रस उत्साह रहेगा और सर्व के गुण देखने से स्वयं भी गुण मूरत बन जाएंगे। स्लोगन, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। कई कहते हैं ना अशरीरी कैसे बने, अशरीरी कैसे बने, क्योंकि व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं तो अशरीरी तो बन नहीं सकते हैं। तो अशरीरी बनने की युक्ति क्या है, स्लोगन में है, बेहद के वैराग्य वृत्ति का फाउंडेशन मजबूत हो, बिल्कुल बेहद का वैराग्य, तो सेकंड में अशरीरी बनना सहज है। और आज से अव्यक्ति इशारों का जो वो स्लोगन, तो जो भी अव्यक्ति इशारे आज से नए अव्यक्ति इशारे हैं पहली तारीख से, तो आज तो हेडिंग है सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। अब इसके अंतर्गत सारा महीना बाबा सुनाएंगे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। तो उसके अंतर्गत अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना, सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा हो, तो अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना ये संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है कि सदैव हर्षित रहना, सदैव मुस्कुराते रहना। दुनिया में सचमुच लोग मुस्कुराना भूल गए हैं। मुझे याद आता है हम लंदन गए थे तो लंदन में बस में चढ़े तो मैंने देखा बस में सब खड़े हैं, कोई खड़े हैं बैठे हैं, क्योंकि ज्यादा तो सीटें नहीं होती जैसे अभी ट्रेनों में, तो खड़े हैं पर एकदम ऐसे उदास, ऐसे मायूस, इससे मायूस। तो अब मैं तो देख रही थी सारे सबके चेहरे मायूस मायूस उदास उदास, तो मैं ऐसे ही किसी के आगे मुस्कुराई और मैं जैसे मुस्कुराई तो वो बहन के आगे मुस्कुराई तो वो मुझे ऐसे देखने लगी, ये मुस्कुराती क्यों है, देखो ऐसे है मुस्कुराती क्यों, इतना टेंशन में है, सब दुनिया में सब टेंशन में है, इसको मुस्कुराना जैसे भूल ही गया है। देखो छोटे बच्चों को कोई टेंशन नहीं होता कैसे मुस्कुराते हैं, परंतु जैसे बड़े होते जाते मुस्कुराना भूल जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना ये संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी की रेखा न हो, परेशानी की रेखा चेहरे पर कभी नहीं हो। जैसे मिसाल क्या देते, जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो, कैसा चमकता हुआ हो, जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। उसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, इजी नेचर, फ्लेक्सिबल नेचर, सबके साथ मिल जाओ। अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। हिलमिल तब जा सकेंगे जब सहनशील होंगे, सहनशील बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको मालूम होगा कि एक बार एक पत्र सब जगह गया था कि कैसे अभी पहली तारीख से विशेष मनसा सेवा कैसे करनी है उसकी पॉइंट्स जाएगी। तो ये 15 दिन की पॉइंट्स है, मनसा सेवा कैसे करें। तो 1 जून से 15 जून 2026 तक के लिए विशेष पॉइंट्स भेज रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय प्रमाण वाणी की सेवा के साथ साथ मनसा शुभ भावनाओं की वृत्ति द्वारा सकाश देने की सेवा बहुत बहुत आवश्यक है। जैसे बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर विश्व के सभी बच्चों की पालना कर रहे हैं, ऐसे हम बच्चों को भी अब बाप समान बेहद की सेवा करनी है, बेहद में सकाश देनी है। इसी लक्ष्य से आपके पास ये पॉइंट्स भेज रहे हैं, जरूर सभी अटेंशन देना जी, सभी को बहुत याद। तो इसमें भी खास मनसा सेवा और उसमें भी खास सोमवार को विशेष अगर मौन रख सको तो बहुत ही अच्छा होगा। तो आज के लिए वर्तमान समय चारों ओर दुख अशांति मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से मनसा सेवा व सकाश की सेवा से वृत्ति से चारों ओर सुख को सुख की अंचली का अनुभव कराओ। हे देव आत्माएं, पूज्य आत्माएं, भटकती हुई दुखी अशांत आत्माओं को सकाश दो, ये मनसा सेवा करो। बाकी मधुबन निवासी भाई बहनों ने बोर्ड पर तो पढ़ ही लिया होगा कि पांडव भवन, ज्ञान सरोवर, शांतिवन और ग्लोबल हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहनों से आदरणीय मुन्नी दीदी जी आज सुबह 11 बजे कॉन्फ्रेंस हॉल में मिलेंगे, सभी को अवश्य आना है। सभी का ब्रह्मा भोजन भी शांतिवन में रहेगा, कृपया सभी समय पर अवश्य पहुंचे। 9 बजे ट्रांसपोर्ट से बसें मिलेगी। तो मधुबन निवासी समर्पित भाई बहनों को मुन्नी दीदी ने विशेष बुलाया है कॉन्फ्रेंस हॉल में 11 बजे पहुंचने के लिए, तो 9 बजे से बसें उनको मिलेगी। ओम शांति।